हम अक्सर सोचते हैं ना कि इतिहास के जो सबसे बड़े बदलाव होते हैं वो किसी भयानक युद्ध से आते हैं या किसी राजा के आदेश से,
बिल्कुल, या किसी बड़ी क्रांति से,
राइट। पर क्या हो अगर एक आम सी दोपहर को एक सड़क किनारे बैठे भिक्षुक का ठीक होना, मतलब एक सिंपल सी घटना, एक ऐसी सुनामी ले आए जो पूरे एंशिएंट रोम और जेरूसलम की नींव ही हिला दे।
सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर यही सच्चाई है।
एग्जैक्टली, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो एक टूटे हुए हाथ या पैर का इलाज एक सीधी सी मेडिकल घटना होती है, बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन आज हम जिस कहानी में उतर रहे हैं ना, वहां एक अकेला चमत्कार एक पूरे शहर में ऐसी हलचल मचा देता है कि वहां की सबसे ताकतवर सत्ता कंप्लीटली घबरा जाती है।
सही बात है। और आज इस गहरी चर्चा में हमारे पास डॉक्टर क्रेग कीना की रिसर्च है जो बुक ऑफ एक्ट्स के अध्याय 3 से 5 पे फोकस्ड है।
हाँ, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ किसी प्राचीन धार्मिक पाठ को रीड करना नहीं है, ये एक्चुअली सत्ता, उसके टकराव और एक ऐसे एंशिएंट सोशल मूवमेंट की चर्चा है जिसने दुनिया के चलने के नियम ही हमेशा के लिए बदल दिए।
और इस मुद्दे पर ना स्रोतों की कोई कमी नहीं है, हम उन तमाम ऐतिहासिक तथ्यों और एंशिएंट कानूनों का विश्लेषण करेंगे जो दर्शाते हैं कि प्राचीन रोम और जेरूसलम का सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता था। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ये नया आंदोलन उन नियमों के बिल्कुल खिलाफ किस तरह खड़ा हो रहा था।
राइट।
ये उस दौर का एक सोशो पॉलिटिकल भूकंप था। सत्ता अपनी जगह बनाए रखना चाहती थी और आम लोग एक नए विश्वास के सहारे उन्हें चैलेंज कर रहे थे।
तो चलो इस सोशो पॉलिटिकल भूकंप के एपिसेंटर पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है गेट ब्यूटीफुल यानी सुंदर द्वार पर हुए एक चमत्कार से। एक भिक्षुक वहां बैठा है। अब एंशिएंट दुनिया में ना मंदिर के बाहर बैठना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता था।
हाँ, क्योंकि लोग पुण्य कमाने आते थे।
वही तो, मंदिर में जाने वाले लोग दान करते थे तो उस भिक्षुक के लिए वहां बैठना बेसिकली एक सर्वाइवल टैक्टिक थी। जब पीटर और जॉन वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो उनसे पैसे मांगता है, लेकिन उनके पास चांदी या सोना नहीं है। वो कहते हैं जीसस के नाम पर उठ और चल।
और इस पॉइंट पर आकर ना चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं।
ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि ये इन जीसस नेम सिर्फ एक जादू का शब्द नहीं था जिसे बोलने से चमत्कार हो जाए। मैं इसको ऐसे देखती हूँ जैसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया में कोई सीईओ अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि को पावर ऑफ अटर्नी दे देता है।
ओ, ये अच्छी एनालॉजी
है ना। वो अधिकार, वो अथॉरिटी उस एजेंट की अपनी नहीं होती, वो तो सिर्फ उस सीईओ के बिहाफ पर साइन कर रहा होता है।
ये बहुत ही सटीक तुलना है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीटर और जॉन इस पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चमत्कार होने के तुरंत बाद वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है।
ऑब्वियस ही बात है, ऐसी चीज देख के भीड़ तो आएगी ही।
हाँ, और उस एंशिएंट कल्चर में जहाँ देवताओं और जादूगरों पर लोगों का बड़ा विश्वास था, लोग पीटर और जॉन को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने अपनी किसी पर्सनल आत्मिक शक्ति या पवित्रता से इस आदमी को ठीक किया हो,
जैसे वो खुद ही कोई भगवान हो।
एग्जैक्टली। लेकिन पीटर तुरंत उस भीड़ के सामने इसका श्रेय खुद लेने से इनकार कर देता है। वो क्लियर कर देता है कि ये किसी इंसानी ताकत का नतीजा नहीं है। प्राचीन समाज में, और सच कहें तो आज के समाज में भी, लीडरशिप का यह बहुत ही अनोखा नजरिया था। वही तो, अगर कोई कॉर्पोरेट प्रतिनिधि कंपनी की सफलता का पूरा क्रेडिट खुद लेने लगे और सीईओ को भूल जाए तो उसकी असली ताकत वहीं खत्म हो जाती है। एक ऑथराइज्ड एजेंट होने का सबसे बड़ा नियम यही है कि ताकत के स्रोत और ताकत के जरिए के बीच का फर्क हमेशा साफ रहे।
बिल्कुल। और जब भीड़ वहां हैरान खड़ी थी ना, तो इसी चमत्कार ने पीटर को अपनी बात रखने का एक बड़ा मंच दे दिया। उसने एक भाषण दिया, लेकिन ये कोई मीठी बातें करने वाला या लोगों को खुश करने वाला प्रभावशाली भाषण नहीं था।
हाँ, वो बिल्कुल भी डिप्लोमेसी नहीं दिखा रहा था वहाँ।
थी पीटर भीड़ को एक बहुत ही कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। वो कहता है कि उन्होंने एक हत्यारे बैराबास को छोड़ दिया और जीवन के निर्माता को मार डाला, जिसे स्रोतों में ग्रीक में आर्चेगोस कहा गया है।
ये जो शब्द है ना आर्चेगोस, ये इस पूरी कहानी के मैकेनिक्स को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
अच्छा, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या था वहाँ?
इसका एंशिएंट दुनिया में मतलब होता था एक पायोनियर, एक हीरो या किसी नए शहर का संस्थापक। पीटर कह रहा था कि जीसस सिर्फ एक रिलीजियस टीचर नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे पायोनियर थे जिन्होंने मौत को हराकर जिंदा होने का एक बिल्कुल नया रास्ता बनाया।
ओ वाओ, तो एक नया पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था।
बिल्कुल।
भीड़ ने क्या किया? इतिहास की सबसे बड़ी आयरनी देखिए, उन्होंने मौत देने वाले एक हत्यारे को चुना और जिंदगी देने वाले को सूली पर चढ़ा दिया। आयरनी की हद है ये तो।
लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है। पीटर इस गलती के बाद रेस्टोरेशन ऑफ ऑल थिंग्स की बात करता है, एक ऐसे दौर की जहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो एक नया क्रिएशन होगा।
वेट, और यहां मेरा दिमाग थोड़ा घूमता है। उस एंशिएंट दुनिया में ये रेस्टोरेशन या सब कुछ नया हो जाने का कॉन्सेप्ट कितना अलग था, क्योंकि उस वक्त तो और भी फिलोसफीज थी ना, जो दुनिया के एंड या नई शुरुआत की बात करती थी।
एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ा आपने। ये एक बहुत बड़ा टकराव था। उस वक्त की सबसे डोमिनेंट फिलोसफी स्टोइसिज्म थी।
हाँ, स्टोइक्स तो काफी पॉपुलर थे रोम में।
सही कहा, स्टोइक्स मानते थे कि ये यूनिवर्स साइक्लिकल है, यानी एक चक्र में चलता है। उनके अनुसार एक लंबा समय बीतने के बाद सब कुछ आग में जलकर भस्म हो जाता है।
ओ, मतलब सब डिस्ट्रॉय हो जाता है।
हाँ, और फिर वही पुराना चक्र, बिल्कुल वही गलतियों और वैसे ही लोगों के साथ नए सिरे से शुरू होता है। इसमें कोई उम्मीद नहीं थी, कोई प्रोग्रेस नहीं थी,
एक तरह से एंडलेस लूप था ये। साउंड्स डिप्रेसिंग ऑनेस्टली।
इट वाज। लेकिन पीटर जिस नए क्रिएशन की बात कर रहा था, वो इस होपलेस साइक्लिकल यूनिवर्स से बिल्कुल अलग था। ये एक लीनियर प्रोग्रेस थी। ये एक ऐसी स्थिति की भविष्यवाणी थी जहां तकलीफों का कंप्लीटली अंत होगा, शांति होगी और नई सृष्टि का वादा पूरा होगा,
जो ज्यूइश प्रॉफिट्स ने बात की थी पहले।
एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही जैसा ज्यूइश पुरानी किताबों जैसे आइज़ाया में लिखा था। स्टोइक होपलेसनेस के सामने ये रेस्टोरेशन एक बहुत बड़ा आशा का किरण था।
लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। भाषण के दौरान पीटर उस भीड़ से कहता है, मुझे पता है कि तुमने ये अज्ञानता यानी इग्नोरेंस में किया। अगर उस एंशिएंट कानून की बात करें तो क्या अज्ञानता या इग्नोरेंस किसी को निर्दोष साबित कर सकती थी?
ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
मतलब आज के टाइम पर तो अगर कोई रेड लाइट जंप कर दे और बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ सिग्नल है, तो पुलिस फाइन तो फिर भी लगाती है ना। क्या एंशिएंट टाइम्स में इग्नोरेंस एक वैलिड लीगल डिफेंस था?
ये एक बहुत ही बारीक और जरूरी मुद्दा है। प्राचीन रोमन और ज्यूइश कानून दोनों में अज्ञानता होने से अपराध पूरी तरह खत्म नहीं होता था, यानी व्यक्ति निर्दोष नहीं बन जाता था।
राइट।
लेकिन हाँ, इससे सजा जरूर कम हो जाती थी, जिसे लीगली रिड्यूस्ड कल्पेबिलिटी कहा जाता है। पीटर यहाँ उसी रिड्यूस्ड कल्पेबिलिटी की बात कर रहा है।
अच्छा, मतलब वो कह रहा है कि उनका इंटेंट मर्डर का नहीं था इन अ कॉस्मिक सेंस।
हाँ, वो कह रहा है कि उन्हें इसलिए माफ किया जा सकता है क्योंकि वो असलियत नहीं जानते थे कि वो किसके साथ क्या कर रहे हैं, पर उस फॉरगिवनेस के लिए उन्हें पश्चाताप करना होगा। और इसके पीछे एक बड़ा थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी काम कर रहा था। डॉक्टर कीनर यहाँ रोमन्स चैप्टर 11 का संदर्भ देते हुए कॉर्पोरेट गिल्ट की बात करते हैं।
कॉर्पोरेट गिल्ट मतलब इंडिविजुअल अपराध की जगह पूरे समाज का एक साथ दोषी होना।
हाँ, जुए सोच में ये माना जाता था कि पूरा राष्ट्र, पूरा इसराइल एकजुट है। अगर कुछ लोगों ने मिलकर अपने ही मसीह को रिजेक्ट कर दिया है तो ये कॉर्पोरेट गिल्ट बन गया।
सो पूरी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल हो गई उस गलती के लिए।
बिल्कुल, इस दोष को ठीक करने के लिए पूरे इसराइल को कलेक्टिवली पश्चाताप करना था। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस नई मूवमेंट में जेंटाइल्स यानी गैर यहूदियों का शामिल होना शुरू हो जाता है।
ओ, ये तो एलीट्स को पसंद नहीं आया होगा।
यहूदी लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उम्मीद ये थी कि जब गैर यहूदी उसी खुदा की शिक्षा को अपनाते हुए देखे जाएंगे तो इसराइल के अंदर एक तरह की जलसी या प्रेरणा जागेगी जो उन्हें अपने मूल विश्वास की तरफ वापस खींचेगी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐतिहासिक और सामाजिक डायनेमिक था जो सोसाइटी को अंदर से बदल रहा था।
और मुझे लगता है यहीं से कहानी में एक नया टेंशन शुरू होता है। जब आम लोग इस संदेश से जुड़ रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो रही थी, नई उम्मीद जग रही थी, तब शहर का एलीट वर्ग, खास तौर पर सद्दूकीज, कंप्लीटली घबरा गए।
हाँ, उनकी नींद उड़ गई थी।
और समझना बहुत जरूरी है कि इन एलीट्स की घबराहट सिर्फ रिलीजियस डिबेट की वजह से नहीं थी। ये लोग उस वक्त के पावर ब्रोकर्स थे। एक छोटा सा आध्यात्मिक आंदोलन अब इन एलीट्स के लिए एक डायरेक्ट राजनीतिक खतरा बन रहा था।
बिल्कुल, इन अथॉरिटीज को इस मूवमेंट से प्रॉब्लम क्या थी, उसके मैकेनिक्स को समझना जरूरी है। सद्दूकीज और फैरिसीज, जो उस वक्त के दो बड़े रिलीजियस फैक्शंस थे, उनके बीच एक टॉपिक पर सालों से बहस चल रही थी।
रेजरेक्शन यानी पुनर्जीवन।
एग्जैक्टली, फैरिसीज मानते थे कि मौत के बाद पुनर्जीवन होगा, लेकिन सद्दूकीज इसका कठोर विरोध करते थे। सद्दूकीज मंदिर को कंट्रोल करते थे, इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। उनका मानना था कि जो है यही फिजिकल दुनिया है।
उनके पास प्रैक्टिकली सारी ताकत थी उस टाइम पर।
हाँ, लेकिन पीटर और जॉन किसी क्लासरूम में खड़े होकर थियोरेटिकल बहस नहीं कर रहे थे। वो जीसस के पुनर्जीवन को एक एम्पिरिकल एविडेंस यानी एक ठोस फिजिकल प्रमाण के रूप में भीड़ के सामने पेश कर रहे थे।
जैसे कि भाई हमने देखा है वो जिंदा हुए हैं।
सही कहा। इसने सदूसीज की अथॉरिटी को सीधी चुनौती दी। अगर रेजरेक्शन सच है तो इसका मतलब खुदा सदूसीज के कंट्रोल वाले सिस्टम के बाहर काम कर रहा है। सत्ता के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता।
Here's what gets really interesting. इस चुनौती का नतीजा क्या निकला? एनस और कायफिस, जो उस समय के हाई प्रीस्ट थे और बेहद रूथलेसली राज करने वाले एलीट्स माने जाते थे,
और डॉक्टर कीनर बताते हैं कि वो टेंपल गार्ड्स के जरिए लोगों को पब्लिक में पिटवाने तक का अधिकार रखते थे।
बाप रे। तो उन्होंने पीटर और जॉन को उठवाया और गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहां जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इन दोनों मछुआरों का रवैया है। पीटर जॉन अनपढ़ और आम माने जाते थे। उनके पास एलीट्स जैसी किसी टॉप यूनिवर्सिटी की ग्रीक एजुकेशन या रिटोरिकल ट्रेनिंग नहीं थी।
कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी उनकी।
वही ना, फिर भी उन्होंने उस ताकतवर बोर्ड के सामने जो साहस दिखाया, बिना डरे जो बातें बोली, इस क्वालिटी के लिए ग्रीक में एक बहुत ही स्पेसिफिक शब्द है ना।
हाँ, और वो शब्द है परथेशिया, जिसका मतलब होता है बोल्डनेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंशिएंट ग्रीस में ये शब्द अक्सर सोक्रेटिस जैसे दार्शनिकों के लिए इस्तेमाल होता था,
जो बिना डरे सच बोलते थे चाहे सामने मौत हो।
एग्जैक्टली, जो सत्ता या मौत के डर के बिना पूरी निर्धारता से सच बोलते थे। पीटर और जॉन की स्पर्थेशन ने इलीट्स को कम्प्लीटली लाजवाब कर दिया, क्योंकि उनके पास आम लोगों के सामने उन्हें पनिश करने का कोई लॉजिक ही नहीं बचा था।
और इस लॉजिक को तोड़ने में एक बहुत बड़ा रोल उस सोसाइटी के बेसिक कानून का था ना, बेनिफेक्शन का कानून।
ओ यस, प्राचीन ग्रीको रोमन समाज में यूर्जिटेस यानी बेनिफेक्शन या परोपकार का एक बहुत बड़ा दर्जा था।
ये प्रैक्टिकली एक सोशल करेंसी थी उस टाइम।
सही पकड़ा। अगर कोई किसी का भला करता है, जैसे पब्लिक के लिए कोई बिल्डिंग बनाना या किसी अपाहिज को ठीक करना, तो पूरी सोसाइटी का उस व्यक्ति पर एक कर्ज बन जाता है। डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि उस दौर में किसी बेनिफेक्शन के बदले सजा देना या उसके खिलाफ जाना इनग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता माना जाता था,
जो उस टाइम का सबसे बड़ा पाप था।
बिल्कुल, पीटर इन अथॉरिटीज को उसी रूल बुक से घेर लेता है। वो एक तरह से पूछता है कि आप हमें सजा किस बात की दे रहे हैं? एक भलाई के काम की, एक लाचार आदमी को ठीक करने की? ये तो आपके अपने ग्रेको रोमन और ज्यूइश कानून के खिलाफ है।
क्या शब्द खेल और क्या स्ट्रेटजी थी ये। मतलब इलीस को उनके ही गेम में हरा दिया। और सिर्फ यही नहीं, एक और वर्ड प्ले जो डॉक्टर कीनर ने स्रोतों में हाईलाइट किया है, ग्रीक शब्द सोजो। इस एक छोटे से शब्द में ना पूरी मूवमेंट की समरी छिपी थी।
हाँ, ये बहुत ही पावरफुल डुअल मीनिंग वर्ड है।
राइट।
सोजो का मतलब फिजिकल रूप से हील होना या ठीक होना भी था, और आत्मिक उद्धार यानी स्पिरिचुअल सेल्वेशन भी। पीटर वहां खड़ा होकर उन ताकतवर लोगों से कह रहा था कि जिस शक्ति ने इस अपाहिज आदमी की टांगों को सोजो किया है यानी हील किया है, वही एकमात्र शक्ति तुम्हारी आत्मा को सोजो कर सकती है यानी सेव कर सकती है।
ये एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने उस थियोरेटिकल ट्रायल को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से निष्कर्ष सिर्फ एक ही निकलता था, कि सत्ता अपनी किसी भी फिजिकल ताकत, जेल या गार्ड से इस आत्मिक सच्चाई को दबा नहीं सकती।
और इलीट्स कुछ कर भी नहीं पाए वहां।
वही ना। और इस कोर्ट ट्रायल का नतीजा सबके सामने था। वो उन्हें बस थ्रेटन करके छोड़ देते हैं।
और आमतौर पर ऐसी धमकी और अरेस्ट के बाद होना क्या चाहिए? एक नया छोटा सा ग्रुप डर के मारे बिखर जाना चाहिए। लोग सोचते हैं भाई एलीट क्लास से पंगा क्यों लेना, चुपचाप घर बैठो अपना काम करो। ह्यूमन साइकोलॉजी तो यही कहती है।
बिल्कुल, लेकिन इस कहानी में ना उल्टा ही होता है। इस प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन ने इस आंदोलन की रफ्तार को दबाने के बजाय और तेज कर दिया। आंकड़े सुनकर सच में दिमाग घूम जाता है। शहर में बिलीवर्स की संख्या लगभग 10,000 तक पहुंच गई। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ 5,000 तो पुरुष थे,
जो कि एक मैसिव नंबर है उस टाइम के हिसाब से।
बहुत मैसिव। अब सोचिए, उस वक्त आर्कियोलॉजी के हिसाब से जेरूसलम की कुल आबादी सिर्फ लगभग 85,000 थी। मतलब पूरे शहर की आबादी का एक छठा हिस्सा एक ही झटके में इस मूवमेंट से जुड़ गया।
अनबिलीवेबल ग्रोथ।
बिना सोशल मीडिया या किसी लाउडस्पीकर के एक साथ कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे थे? क्या सच में इतनी एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी ऐतिहासिक रूप से संभव थी, या ये आंकड़े बस बात के राइटर्स ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किए हैं?
ये एक बहुत ही वैलिड डाउट है जो किसी को भी आ सकता है, और लगता भी है कि एग्जैजरेशन होगा, लेकिन समाजशास्त्र और इतिहास बताते हैं कि ये आंकड़े रियलिस्टिक थे और बिल्कुल संभव थे।
अच्छा,
कैसे?
इसके मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें एंशंट ओरल कल्चर्स और मॉडर्न रिवाइवल्स दोनों को देखना होगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग हुई थी या इंडोनेशिया का नियर्स रिवाइवल, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल 20th सेंचुरी का पेंटिकॉस्टल मूवमेंट।
ओह, उसमें भी तो ऐसी क्रेजी ग्रोथ हुई थी। एग्जैक्टली, डॉक्टर कीनर नोट करते हैं कि पेंटिकॉस्टल मूवमेंट सिर्फ एक सदी में लगभग आधे बिलियन यानी 500 मिलियन लोगों तक फैल गया। जब कोई रिलीजियस या सोशल रिवाइवल अपनी शुरुआती तेजी में होता है और उसमें डीप कन्विक्शन होती है, तो वहां ग्रोथ लीनियर नहीं लॉगरिथमिक होती है।
मतलब एक्सप्लोजन होता है नंबर्स में।
हाँ, और जहां तक उन 10,000 लोगों के कोऑर्डिनेशन की बात है, वो किसी एक बड़े स्टेडियम में नहीं मिलते थे, वो अपने घरों में, छोटे ग्रुप्स में, टेंपल के कोर्टयार्ड्स में मिलते थे। एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बन चुका था,
एक तरह का ऑर्गेनिक नेटवर्क था वो।
बिल्कुल, और इस नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत इनकी एक ऐसी आदत थी जिसने पूरे एंशिएंट समाज को अट्रैक्ट किया, वो थी इनकी कम्युनिटी शेयरिंग। ये लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे।
हाँ, उनका मकसद बन गया था कि उनके बीच कोई भी गरीब या भूखा नहीं सोना चाहिए। जोसेफ बार्नाबास का केस काफी फेमस है इसमें। वो साइप्रस का एक लेवाइट था, उसने अपनी अच्छी खासी जमीन बेची और सारा पैसा लाकर अपोस्टल्स के पैरों में रख दिया, ताकि जिसे जरूरत हो उसे बांटा जा सके।
और इस इकोनॉमिक्स को थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। ये सामुदायिक साझा या प्रॉपर्टी शेयरिंग उस टाइम के कुछ और ग्रुप्स में भी थी, जैसे डेड सी स्क्रोल से जुड़े एसीन्स या पाइथागोरस के फॉलोअर्स।
पाइथागोरस?
हाँ,
जो माथ वाले थे।
हाँ, वही। लेकिन उन ग्रुप्स में और इस नई मूवमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क था। उन एंशिएंट कल्ट्स में नियम था कि अगर किसी को उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो अपनी सारी संपत्ति स्ट्रिक्टली सरेंडर करनी ही होगी। ये कानून था, एक कंपल्सरी टैक्स की तरह।
या तो सब कुछ दो या बाहर रहो।
एग्जैक्टली। लेकिन इस नए आंदोलन में ये शेयरिंग पूरी तरह वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक थी। ये कानून पर नहीं बल्कि उनके नए क्रिएशन वाले विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रेम पर आधारित थी। और एंशिएंट रोमन दुनिया, जहां पावर और ऑपरेशन का राज था, वहां जब आम लोग देखते थे कि कुछ लोग दूसरों की फिक्र में अपनी संपत्ति त्याग रहे हैं, तो उस रेडिकल लव का आकर्षण किसी चमत्कार से कम नहीं था।
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब कोई आंदोलन इतनी मैसिव तेजी से बढ़ता है, उसमें इतना रेडिकल अपनापन और एक टाइटनेट सपोर्ट सिस्टम होता है, तो एक प्रॉब्लम आती है।
हाँ, लोग गलत इरादे से भी आने लगते हैं।
वही तो, कुछ लोग उस कम्युनिटी में सिर्फ उसके बेनिफिट्स, फाइनेंशियल सेफ्टी या सोशल स्टेटस के लिए शामिल होने की कोशिश करने लगते हैं। पता है, मुझे तो ये किसी आजकल की सिलिकन वैली स्टार्टअप जैसा लग रहा है।
कैसे मतलब?
वो एक ऐसी सक्सेसफुल स्टार्टअप जहां अर्ली स्टेज की मेहनत तो कुछ लोगों ने गैराज में की, पर जब हाइप बन गई, वैल्यूएशन बढ़ गई, तो नए लोग सिर्फ कूल फैक्टर, नेटवर्क और स्टॉक ऑप्शंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं।
हाँ।
उन्हें विजन से कोई मतलब नहीं होता।
एग्जैक्टली।
उन्हें उस कंपनी के कोर मिशन या स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें बस उस इन क्राउड का हिस्सा दिखना है। पर यहाँ इस मूवमेंट रूपी स्टार्टअप में झूठ और दिखावे की कीमत सिर्फ नौकरी जाना नहीं था, बल्कि मौत थी। अनन्यास और सफीरा की घटना इस पूरे नैरेटिव को एक बहुत ही डरावना मोड़ दे देती है।
बिल्कुल, उस स्टार्टअप एनालॉजी को ही आगे बढ़ाते हैं। ये एक एंशिएंट स्टार्टअप था जो अभी कम्प्लीटली नया और फ्रेजाइल था, और अनन्यास और सफीरा वो इन्वेस्टर्स या अर्ली एम्प्लॉइज थे जो वैल्यूएशन बढ़ाने या अपनी इमेज बनाए रखने के लिए फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दे रहे थे,
फेक पीआर कर रहे थे।
हाँ, उन्होंने अपनी एक जमीन बेची, लेकिन टोटल पैसे में से एक बड़ा हिस्सा छुपाकर बाकी का हिस्सा पब्लिक के सामने ऐसे पेश किया जैसे उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया हो। उनकी गलती ये नहीं थी कि उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। जैसा मैंने पहले कहा, दान पूरी तरह वॉलंटरी था।
हाँ, वो अपने पास रख सकते थे थोड़ा पैसा अगर उन्हें बताना होता।
एग्जैक्टली। उनकी गलती थी दिखावा और कम्युनिटी के ट्रस्ट के साथ फ्रॉड करना। उस अर्ली स्टेज में एक छोटा सा झूठ पूरे मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। डॉक्टर कीनर इस घटना की जड़ें ओल्ड टेस्टमेंट की एक स्टोरी जोशुआ चैप्टर 7 से जोड़ते हैं।
उसमें क्या हुआ था?
वहां अचान नाम के व्यक्ति ने युद्ध के बाद कुछ पवित्र चीजों को चुराकर छुपा लिया था, जिसका नतीजा पूरी कम्युनिटी को डिफीट और मौत के रूप में भुगतना पड़ा था।
मतलब जब बात इतने पवित्र और खोर विश्वास की हो, तो एक इंसान की हिपोक्रेसी या आधी अधूरी लगन सिर्फ उसकी पर्सनल फेलियर नहीं होती, वो पूरे ग्रुप के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन सकती है।
सही समझे। जब एक रिवाइवल अपनी पीक प्योरिटी पर होता है, जब उनकी गैदरिंग्स को होली स्पेस माना जा रहा था, तब हिपोक्रेसी यानी पाखंड सबसे बड़ा इंटरनल खतरा बन जाती है।
प्राचीन ज्यूइश समाज में इसको होली फायर यानी पवित्र आग के साथ खेलना माना जाता था।
ये आग के साथ खेलने वाला लिटरल भी हो सकता है ना एंशियंट कॉन्टेक्स्ट में?
हाँ, एक उदाहरण एरोन के बेटों का है जिन्होंने मंदिर में अनधिकृत आग जलाई थी और ऑन द स्पॉट मारे गए थे। पवित्रता और पावर मजाक नहीं थे। अनानियास और सफीरा को ऑन द स्पॉट मौत की सजा मिली। इस घटना ने पूरे शहर और समुदाय में एक भयानक खौफ फैलाया।
पूरा शहर डर गया होगा।
बिल्कुल, लेकिन इस डर, इस फियर ने एक बहुत अजीब सा पैराडॉक्स पैदा कर दिया।
सो देखो, एक तरफ लोग क्लियरली बहुत टेरिफाइड थे कि भैया इस ग्रुप से दूर ही रहो, अगर तुम्हारी नीयत साफ नहीं है या तुमने एक भी झूठ बोला तो तुम्हारे प्राण पखेरू उड़ जाएंगे। पर ह्यूमन नेचर भी अजीब है ना, कभी कभी एक्सट्रीम प्योरिटी और डेंजर एक्चुअली एक मूवमेंट को ट्रू बिलीवर्स के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। क्या यही पैराडॉक्स वहां देखने को मिला?
100% सही बात है। लोग डर के मारे लाइटली इस ग्रुप से जुड़ने से घबरा रहे थे, जो कि फेक लोगों को फिल्टर आउट करने का एक नेचुरल तरीका बन गया,
एक नेचुरल फिल्टरिंग प्रोसेस।
हाँ, लेकिन दूसरी तरफ इस एक्सट्रीम प्योरिटी और खौफनाक इंसिडेंट के बाद मूवमेंट की आत्मिक शक्ति और बढ़ गई। चमत्कारों में ऐसी तेजी आई कि लोग बीमारों को अपने घरों से निकालकर सड़कों पर लिटाने लगे।
क्यों?
ताकि जब पीटर वहां से गुजरे तो कम से कम उसकी परछाई यानी शैडो भी उन पर पड़ जाए तो वो ठीक हो जाए।
पीटर की परछाई, ये डिटेल सच में माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, एक शैडो जिसका कोई मास नहीं है, जिसमें कोई फिजिकल मैटर नहीं है, लोग उसको एक हीलिंग का सोर्स मान रहे थे।
आस्था की शक्ति थी वो।
राइट, तो आज इस पूरी लंबी चर्चा और इन तमाम ऐतिहासिक स्रोतों को डाइसेक्ट करने के बाद इस सबका मेन टेक अवे क्या है? ये स्रोत सिर्फ एंशियंट स्टोरीज नहीं है, ये दिखाते हैं कि सच्ची कन्विक्शन एक्चुअली कैसे काम करती है, जब आम लोग, ऑर्डिनरी मछुआरे, किसी नए विश्वास के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जब वो अपना पैसा कम्युनिटी के लिए सरेंडर करते हैं, और जब वो ताकतवर एलीट अथॉरिटीज की आंखों में आंखें डालकर उसी परिसिया यानी नीडर बोल्डनेस के साथ सच बोलने का साहस रखते हैं, तब वहां सत्ता की कोई दीवार टिक नहीं पाती। एक अकेली आवाज कैसे सोसाइटी की दिशा बदल सकती है, ये एक्ट्स का ये हिस्सा बखूबी सिखाता है।
और ये बदलाव किसी एक हाईली एजुकेटेड इंसान या एक पॉलिटिकल स्कीम की देन नहीं थी।
बिल्कुल नहीं,
ये उस आम आदमी की कलेक्टिव कन्विक्शन थी जो सदियों तक अपना प्रभाव छोड़ती है। ये स्रोत हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति टॉप डाउन यानी महल से सड़क पर नहीं आती, बल्कि सड़क पर भीड़ की आम सॉलिडेरिटी और उनके अनवेवरिंग विश्वास से शुरू होती है।
एब्सोल्युटली, और इस पूरे डिस्कशन के एंड में एक ऐसा ख्याल भी सामने आता है जो किसी को भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। स्रोतों में डॉक्टर कीनर एक और डीप कनेक्शन ड्रॉ करते हैं ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट एलाइशा से।
हाँ, वो हड्डियों वाला रेफरेंस।
राइट, वहां लिखा है कि एलाइशा की मृत हड्डियों के संपर्क में आने से एक मुर्दा जिंदा हो गया था, और यहाँ इस नए मूवमेंट में पीटर की सिर्फ एक परछाई के पड़ने से लोग ठीक हो रहे थे। इन दोनों बातों में एक बहुत ही गहरी सिमिलैरिटी है।
बिल्कुल, और ये चमत्कार सिर्फ हैरानतंगेज किस्से नहीं है, ये एक्चुअली ह्यूमन एग्जिस्टेंस और रियलिटी को लेकर एक बेहद गहरा दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं।
और वो प्रश्न ये है कि क्या ऑर्डिनरी भौतिक चीजें जैसे किसी की सूखी हड्डियां या सड़क पर पड़ती हुई एक परछाई खुद आत्मिक शक्ति का एक कॉन्डुएट यानी जरिया बन सकती हैं? हम आमतौर पर दुनिया को फिजिक्स और बायोलॉजी के स्ट्रिक्ट चश्मे से देखते हैं, जहां फिजिकल दुनिया अलग है और स्पिरिचुअल दुनिया अलग।
हमने उन्हें अलग अलग बॉक्सेस में डाल दिया है।
एग्जैक्टली, लेकिन अगर एक बेवजह परछाई किसी की बीमारी ठीक कर सकती है तो क्या पता हम फिजिकल मैटर और आत्मिक शक्ति के बीच की उन बाउंड्रीज को कितना गलत समझते हैं।
शायद वो झिलमिलाता हुआ पानी जहां हम पत्थर फेंकते हैं और वो पैदा होने वाली लहर, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही यूनिवर्सल आग की अलग अलग गुनगुनाहट है।
ये थॉट ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना? ये एक ऐसा ख्याल है जो सच में रियलिटी को देखने का नजरिया बदल देता है। यहीं इस लंबे और फैसिनेटिंग विश्लेषण पर हम विराम लगाते हैं। ऐसे ही गहरे और छुपे हुए इतिहास को खोलने के लिए मिलते हैं अगले डीप डाइव में।